लर्नर्स, आज हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे. उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से अपना करियर चूज करते हैं. तो अभी भी आपके मन में विचार आता होगा, आप पढ़ भी रहे हैं तभी भी आप सोचते होंगे कि आपको आगे जाके जॉब करना है या फिर आपको कोई बिजनेस करना है या आप किसी बिजनेस फर्म में जॉब करना चाहते हैं. तो जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर से तात्पर्य है मतलब कि ऑक्यूपेशन, कौन सा ऑक्यूपेशन हम जो है हम उसको किस क्या हम करना चाहते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. और जब हम चूजिंग की बात करते हैं उसको चूज करने की, तो मतलब है कि हमें प्रॉपर डिसीजन लेना होगा कि हम कौन सा करियर या कौन सा ऑक्यूपेशन हम अडॉप्ट करना चाहते हैं. आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे और कई बार ऐसा होता है कि हम रेडियो सुन रहे होते हैं या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं या कई बार कुछ बुक्स या मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें कई सारी जॉब वैकेंसीज दिखाई देती हैं जो टाइम टू टाइम एडवर्टाइज होती हैं. या फिर कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमें कुछ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे को, या रिलेटिव्स बताते हैं कि हमें किस तरह से करना चाहिए. और आजकल तो फ्रेंड्स भी आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं कि आगे को किस तरह से क्या करियर चॉइस होनी चाहिए, कौन सा जो ऑक्यूपेशन है वो चूज करना चाहिए. तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आप सोचते होंगी आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या आप इजीली हैंडल उसको, जो भी आपको लगता है कि आप उसको हैंडल कर पाएंगे. तो जब आप कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी एबिलिटीज़ और अपने जो एप्टीट्यूड है वो अपना फ्यूचर लाइफ, जो भी आप फ्यूचर वर्क लाइफ आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप उसको धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इससे हमारे अंदर भी ये भावना आती है या हम भी ये सोचते हैं कि किस तरह से हम इस जॉब को या जो रोल हम चाहते हैं, कुछ हम बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं. हम अपने अगल बगल जो भी लोग रहते हैं उनको नोटिस करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करते हैं, वो किस तरह के काम करते हैं उसको नोटिस करते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको अपने अंदर अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं. तो आज लर्नर्स, आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जो करियर चूज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके वेन्यूज़ क्या हैं जो हम जो करियर में यूज़फुल होते हैं डिसाइड करने के लिए हमें, कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे. तो जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर का मतलब है एक ऑक्यूपेशन जिसमें जिससे जो कि हमें चूज़ करना है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. तो बहुत सारी इसमें पोजीशंस हो सकती हैं, मे बी हम अपने पसंद का कोई कोर्स करके और हम फिर उसमें हम आगे कुछ उससे रिलेटेड वर्क करना चाहें, या फिर कोई ये भी हो सकता है कि कोई एक जॉब चूज करे किसी ऑफिस का और उसके हिसाब से ही वो अपनी लाइफ को अडॉप्ट करे. तो जो करियर है उसका मतलब होता है कि जो हम प्रोग्रेस करते हैं या जो हम एक्शंस हम लेते हैं अपने लाइफ टाइम में और जो हमें अपने ऑक्यूपेशन तक पहुंचाती हैं. तो ये जो प्रोग्रेस और जो एक्शन है इसको हम ये हमें जो है अपने पसंद के करियर तक पहुंचाती हैं. तो इम्पॉर्टेंस क्या है करियर चूज करने की, ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो करियर चूज करने के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पहले से प्लान करना पड़ता है कि आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका माइंडसेट है या आपको लगता है कि आप में कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो एक किसी तरह के करियर को करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखते हुए उसको एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा होता क्या है कि ज़्यादातर अगर हम देखें अपने आसपास के लोगों को तो हम देखते हैं कि पहले लोग अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है. लेकिन अब जब हम प्रेजेंट जेनरेशन को देखते हैं तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. अब अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो अब उभर के नई प्रतिभा आ रही है, उनकी सोच थोड़ी अलग है। अगर हम उनसे बात करें या उनको देखें, तो वो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, या क्या चीज़ उनको एस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए। तो पहले उसको डिसाइड करने के बाद फिर वो उसके हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को चूज करते हैं कि अच्छा, अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है तो मेरे सब्जेक्ट्स मुझे क्या लेने चाहिए, मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जो हमारी यंगर जनरेशन है जिससे ऑलरेडी उसको फॉलो कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जब हम आज के वर्ल्ड में देखते हैं, जब जहाँ की बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो एक सही करियर चॉइस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है जो हमें जो वेरियस करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं वहाँ तक हमें पहुँचाता है। इसके इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि हम भी अपनी बहुत सारी जो एबिलिटीज़ हैं या जो हम में हिडन क्वालिटीज़ हैं, वो भी हम उनके बारे में जान पाते हैं और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, या किस तरह से वो हमें हमारे करियर में मदद कर सकती हैं, वो भी हम जानते हैं जान पाते हैं। तो करियर प्लानिंग जो है वो हमें हमारे सामने लाती है कि जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस करियर के, और या फिर जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो करियर प्लानिंग जो है यूजुअली तब स्टार्ट होती है जब कोई पर्सन जो है वो अपना सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट कर लेता है, या फिर उसमें जा रहे होते हैं, एनरोल कर रहे होते हैं। तो उस लेवल पे जो है जो भी पर्सन है वो ये सोच पाते हैं कि उन्हें किस तरह के कोर्सेज के लिए ऑप्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या स्किल्स अगर उनके हैं तो किस तरह से वोकेशनल सब्जेक्ट्स उनको चूज करने चाहिए। तो और इसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में भी अगर कोई आपकी स्पेसिफिक करियर चॉइस होती है, तो तभी भी आप अपने सब्जेक्ट्स या कोर्सेज उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई बैंक में जाना चाहते हैं, या मे बी कुछ अपनी फर्म चाहते हैं जिसमें वो अकाउंटिंग और ऑडिट्स के लिए लोगों को गाइड कर सकें, तो मे बी उन्हें ICW या CA या MBA फाइनेंस करने की करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ साथ जैसे हमने करियर चूज करने की बात करी कि क्या क्यों इम्पोर्टेंट है करियर चूज करना, उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या करियर एवेन्यूज हैं। तो अगर हम करियर एवेन्यूज की बात करते हैं, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट जो है, जब हम किसी दूसरे पर्सन के लिए जॉब करते हैं, काम करते हैं, जिसके रिटर्न में हमें वेजेस मिलती हैं या फिर सैलरी मिलती है, इसको हम वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जब जो कोई ऐसा काम होता है जो भी वेज एम्प्लॉयमेंट में लोग होते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक ऑफिस असिस्टेंट को ले लें, तो उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें बोला जाता है, जो ऑफिस सुपरवाइजर चाहते हैं कि वो करें। इसके एवज में उन्हें मंथली सैलरी मिलती है जॉब करने के लिए। और ये जो जॉब होता है, हम देखते हैं ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर्स होता है और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, जो भी उनको टास्क असाइन किए जाते हैं कि आपको ये काम करने हैं, वो सब काम करते हैं और उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिलती है। जब जो भी उनके वर्किंग आवर्स असाइंड होते हैं उसके हिसाब से उन्हें काम करना होता है, उस टाइम पे आना होता है जिस टाइम पे सुबह ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, और जो उनके ऊपर जो कंट्रोल है या जो सुपरविजन है वो उनके एम्प्लॉयर या फिर सुपरवाइजर का रहता है। इसके बाद जब हम वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जी हमने वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो जैसे हम देखते हैं कि वेज एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, रेलवेज हम देखते हैं, या बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, या कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी सभी जगह पे हम देखते हैं कि हमें वेज एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो इस तरह से होता है कि वर्क आपको असाइंड होता है और वो वर्क आपको परफॉर्म करना होता है विद इन जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर। उसके अलावा जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है, जो एक इंडिविजुअल है वो खुद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करते हैं जो उनकी अपनी होती है, और इस तरह के जो सेटअप होता है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अगर आप अपनी लोकेलिटी में भी देखते होंगे तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आते होंगे, जैसे कि कोई स्टोर है या फिर कोई एक छोटी सी रिपेयर की शॉप खोल के बैठा है, चाहे वो साइकिल रिपेयर की शॉप ही क्यों ना हो। तो वो हम देखते हैं कि वो अपनी ईज पे काम करते हैं, या फिर कई कई बार हम देखते हैं कि पास में कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स की शॉप है, कोई साइकिल की शॉप है या ब्यूटी पार्लर है। तो इस तरह की जो भी सेटअप्स हैं इनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि वो भी अपने जो वर्क कल्चर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी सर्वाइव करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करना पड़ता है। तो इस लेकिन फिर भी उनके पास वो अपनी ईज पे काम कर पाते हैं, और उनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनके लिए डायरेक्ट मोटिवेशन भी होता है कि उन्हें पता है कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, उसके डिफरेंस देखें, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनको एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाता है, मतलब खुद से वो एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। लेकिन जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसमें हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ जो है वो एम्प्लॉयर असाइन करता है। अगर हम स्टेटस की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन जो सेल्फ खुद से एम्प्लॉयड है वो एक ओनर होता है। लेकिन अगर हम वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो पोजीशन होती है पर्सन की वो एक एम्प्लॉय की तरह होती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इनकम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, एबिलिटी जो ओनर की एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं और कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जो इनकम होती है वो फिक्स होती है, और तभी बढ़ सकती है अगर उसको जो है एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं बढ़ाने के लिए। तो कई सारे एरियाज हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल रिटेल बिजनेसेस हैं, या कई कई बार हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल रिटेल बिजनेस की जब हम बात करते हैं कि जिसमें जैसे कि या तो खुद ही से वो सिंगल ओनर्स हैं, खुद ही से मैनेज कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने पास में एक या दो असिस्टेंट रखे हुए हैं उनके हेल्प से वो मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ग्रॉसरी स्टोर है, स्टेशनरी शॉप है या फिर कोई क्लॉथ स्टोर है। उसके अलावा कई बार इंडिविजुअल स्किल्स के बेसिस पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बाइसिकल रिपेयर है, स्कूटर्स हैं, या वॉच रिपेयरिंग शॉप्स हम देखते हैं, क्लॉक्स हैं, या टेलरिंग है, हेयर ड्रेसिंग है। तो इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्किल्स पे सब सर्विसेज जो हैं बेस्ड होती हैं, और ये कस्टमाइज्ड सर्विसेज जो हैं कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड होती हैं, जिसमें जो है कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम देखते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। तो इन ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको दी जाती है, और उन स्किल्स जो ये डेवलप करते हैं उनके बेसिस पे अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर कोई फार्मिंग कर रहा है स्मॉल स्केल पे, तो वो भी हो सकता है, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, या सेरीकल्चर है, ये सब भी इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं एक्टिविटीज़ जैसे स्पिनिंग है, या बुनाई है, कढ़ाई है, स्टिचिंग है, गारमेंट स्टिच करना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी जो है एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ली जा सकती हैं। तो लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो ट्रेडिशनली इनहेरिटेड स्किल्स होते हैं वही लोग ये काम करते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ पुराने इलाकों में चले जाएं कि जहाँ लोग कढ़ाई करते हैं, तो आप घर में देखेंगे उनके कि उनके घर में सब लोग कढ़ाई करते होंगे, उन सबको वो चीज़ आती है क्योंकि वो बच्चे बचपन से वो चीज़ देखते हुए बड़े होते हैं, तो वो बहुत ये स्किल वो एक नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हम इस तरह के हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जैसे कि कुछ ऑक्यूपेशंस जैसे कि कोई सुनार है या फिर कोई लोहार है या कोई कारपेंटर है, तो इस तरह के भी हम ऑक्यूपेशंस देखते हैं कि सेल्फ ट्रेंड भी होते हैं लेकिन कई बार इनहेरिटेड स्किल्स के बेसिस पर भी होते हैं। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे प्रेफरेंस देते हैं लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वेज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना टैलेंट पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ और अपने बेनिफिट के लिए अपनी पूरी एबिलिटी का यूज़ कर पाएँ, अपने टाइम के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को ढाल पाएँ। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है आजकल हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट भी दे रही है हमें, और कई बार जो स्मॉल लेवल पे अगर हमें काम करना है तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हम देखते हैं कि जो भी पर्सन है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है जब वो ऑन जॉब होता है, क्योंकि उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसलिए जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लोग बहुत प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो सबसे पहले तो जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम किसी सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, हम घबराएंगे नहीं कि अगर हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमें उसको वाइजली कैसे हमें उसको कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। रिस्क बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लेकिन जो वो रिस्क है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, इतना भी हम ज़्यादा रिस्क ना ले लें कि हम सब कुछ दांव पे लगा दें। तो इसलिए एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ऊपर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके मन में ये विचार आएगा कि मैं ऐसा करूँ कि या ना करूँ, लेकिन तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और जो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बनते हैं। उसके अलावा जो अलर्टनेस और फोरसाइट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आपको चौकन्ना रहना है कि बाहर मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट करना है। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने डिसीजन मेकिंग की बात करी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ हम ये कर सकते हैं और हम इन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी के साथ में भी डील करने में हो, सप्लायर्स होंगे आपके साथ में, क्रेडिटर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जिनके साथ में आप डील करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भी आपका बिजनेस को चलाने के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो या फिर स्किल हो, उसके भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी रेलेवेंट लॉज हैं जिससे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं जो हर कोई एडमायर करता है वो भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, या जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी अच्छा पर्सन होता है वो ऑनेस्ट होता है, सिंसेयर होता है, दूसरों के बारे में कंसिडरेट होता है, हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। तो अगर आपके पास में भी कुछ असिस्टेंट्स हैं जो आप अपने बिजनेस में रखेंगे या लोगों के साथ में डील करेंगे, तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके साथ में आप अपने बिजनेस में अंदर भी लोगों के साथ में डील करते हैं और जब आप बाहर भी लोगों के साथ में डील करते हैं तो आपकी एक क्रेडिट वर्दनेस होती है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब सबसे पहले आपने जाना कि वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है और क्यों जो है वो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वेज एम्प्लॉयमेंट पे प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। आपकी भी कुछ प्लानिंग होगी कि आप किस तरह से अपना लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं? अगर आप कोई रिस्क लेने को तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम एक एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाता है, एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है, डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है और क्लर्क अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक में और दूसरे ऑफिसेस में। ये एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो जो है वो काम करते हैं जो उनके एम्प्लॉयर्स उनको देते हैं, जैसा कि अभी हमने वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा। दूसरी तरफ एक शॉपकीपर है, एक फैक्ट्री ओनर है, एक बिजनेसमैन है या फिर एक डॉक्टर है जिसकी अपनी क्लिनिक है और जो अपने क्लिनिक को चला के अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में भी अभी हमने डिस्कशन किया। तो लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो अपने लिए ही अपने लिए तो मतलब काम करते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब्स जेनरेट करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर जो इनोवेट करता है, जो फाइनेंसेस और जो दूसरी रिसोर्सेज हैं उनको पूल इन करता है और एफर्ट्स लेता है कि वो जो उसके इनोवेशंस हैं वो इकोनॉमिक गुड्स में बदल जाएं। कई बार जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में वो सामने आते हैं, और कई बार लोग छोटे लेवल पे भी काम करते रहते हैं। बट दोनों ही केसेस में हम जो एंटरप्रेन्योरशिप है, नए बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो इस पे डिपेंड करता है कि क्या कैपेसिटी है, क्या विलिंगनेस है लोगों की कि वो इस तरह की एक्टिविटी को अंडरटेक करें और पूरा मैनेजमेंट करते हुए, एक प्रोडक्टिव वेंचर बनाते हुए, पॉसिबल रिस्क को लेते हुए और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो उनके लिए रिवॉर्ड है, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इनोवेट करते हैं, अपने आइडिया को प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं, इनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली हैं कौन? वो एक क्रिएटिव थिंकर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, जो वॉलंटियर करते हैं कि वो रिस्क लेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और इस प्रोसेस में वो जॉब्स जनरेट करते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं कई बार उनको भी सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू एडिशन का भी कई बार काम करती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप हम देखते हैं कि वो एक पर्सन के स्किल्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी एबिलिटी टू इनोवेट के साथ साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ आती हैं कि किस तरह से एक आइडिया को इनोवेट करना है, प्रोडक्ट बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह से सर्विस देनी है और किस तरह से उसको सोशल यूज़ के लिए लाया जा सकता है, इन सब को की जब हम बात करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर में ये सब क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक करियर ओरिएंटेड पर्पसफुल टास्क होना चाहिए जिसके लिए आप करना चाहते हैं, और सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े लेवल पे ही काम करना है, छोटी एंटरप्राइजेस होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने की बड़ी एंटरप्राइज होना इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं वो भी हम देखते हैं कि थोड़े थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लोकल रिसोर्स है उसको भी एम्प्लॉय करना बहुत ज़रूरी है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको पुल इन करना, जो जो आसपास के लोग हैं उनको भी उससे जॉब मिलती है, उनको भी उससे मदद मिलती है। तो आइडिया को जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्रक्स है। उसके अलावा लर्नर्स, अगर हम बात करें कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। जो भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, तो हम उसमें से देखते हैं कि ज़्यादातर इनोवेशंस जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही हो रही हैं। उसके अलावा वेल्थ क्रिएट करता है नेशन के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी क्रिएट करता है। जैसा कि हमने बात करी कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ एक सोशल कॉज होती है जिसके लिए काम किया जाता है, तो उसको एड्रेस करने के साथ साथ लोगों को भी जो जो प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, प्रोडक्ट को डेवलप करने का, मार्केट तक पहुंचाने का, उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग भी रास्ते में इन्वॉल्व होते हैं, जो उससे गेनफुली जिनको एंगेज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन सी क्वालिटीज होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इनिशिएटिव है। आज की अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि आपके आसपास हैं। अब ये भी एक चैलेंज होता है कि किस अपॉर्चुनिटी को आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, आपको एक्शन इनिशिएट करना है, क्योंकि आपको खुद से एक्शन लेना है। जाहिर सी बात है कि कोई आपको आके बताएगा नहीं कि आपको ऐसा ऐसा कर लो, आपको सोचना है, इनोवेट करना है, इनिशिएट करना है। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसका एडवांटेज लेना है। जैसे कि हम फेमस कोट भी है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वन, सो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और इनिशिएटिव जो है एंटरप्रेन्योर के जर्नी में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो विलिंगनेस होनी चाहिए, रिस्क लेने के लिए भी एक विलिंगनेस की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेसमैन है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे या प्रॉफिट अर्न करे। शुरुआत में हो सकता है, कई बिजनेस में हम देखते हैं कि कई बार थोड़ा लॉस भी होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वॉलंटियर करें, वो आगे बढ़ें और वो रिस्क लें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं और सक्सेसफुल प्रूव हों। क्योंकि इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाएंगे कि क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो नया काम करते हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारी गलतियां भी कर सकते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन वो अपनी जो भी वो गलतियां करते हैं वो ये ध्यान में रखते हैं कि वो अब इस गलती को आगे रिपीट ना करें, क्योंकि इससे उनको लॉस हो सकता है। तो वो अपनी एबिलिटीज जो हैं उनसे उनको यूज़ करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। फिर जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें मोटिवेशन है। मोटिवेशन हम सब जानते हैं कि सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, तो बहुत ही ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए कि आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप बीच में हो सकता है कि आप कई बार हताश हो जाएं कि ये काम कैसे होगा, या ये तो मुश्किल काम है, या मैं इतना रिस्क लूं अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, कई बार ऐसी चीज़ें ध्यान में आएंगी। लेकिन आपको जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है बिजनेस के लिए, वो होना ज़रूरी है। और सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप होंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी एसेंशियल क्वालिटी हम कह सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हमने पहले भी बात करी की थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, और एक अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके अलावा आपके साथ और भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी इंस्पायर करना कि नहीं हमें ये करना है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो मोटिवेशन और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये रिफ्लेक्ट भी होते हैं एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी पर्सनालिटी में, कि उनमें एक एबिलिटी होती है कि एबिलिटी वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे टीम को लीड कर सकते हैं। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी एंटरप्राइज को चलाते हैं आपको बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं, और जो टाइमली आपको लेने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ किनारे करके रख देंगे कि इसको बाद में सोचेंगे, इसको बाद में करेंगे। आपको टाइमली डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं। अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ आगे बढ़ रही हैं, और अगर एंटरप्रेन्योर में टाइमली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं और उनको लॉस हो सकता है। उसके अलावा फंक्शंस क्या हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मेजर फंक्शंस जो हैं एंटरप्रेन्योर के, वो सबसे पहला तो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। तो अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, या फिर जो ह्यूमन नीड्स हैं जैसे कि फूड है, कपड़ा है, या एजुकेशन है, फैशन है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो लगातार ये बदल रही हैं। और ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो जो भी इनसे अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें। और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो एक कॉमन मैन है उससे जल्दी इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है। जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे ही देखें, अगर हम कोविड का ही एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसे काम करते थे जो अब नहीं चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम रोड साइड ईटरीज की बात करें तो बहुत सारी शॉप्स हैं जो अब हम देखते हैं कि स्टॉल्स लगते थे शाम को जो अब बंद हो गए हैं, क्योंकि अब लोग बाहर नहीं खा रहे हैं और उनको पता है कि ये सेफ नहीं है कोरोना की वजह से, और जो बेचने वाले लोग हैं उनका भी ये काम बंद हो गया है। तो हम देखते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आइडेंटिफाई करें कि अगर अब कोरोना का टाइम है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें हम देखते हैं अपने आसपास की मास्क बेच रहे हैं क्योंकि अभी उसकी नीड है, या फिर सैनिटाइजर बेच रहे हैं, या फिर कई लोगों ने, कई बिजनेसमैन इस तरह के भी हैं जिन्होंने ऑफिस सैनिटाइज करने के लिए छोटी छोटी मशीन्स बनाई हैं, या हर चीज़ में हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में लोग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास, हमारे सामने जो भी सिचुएशन हो उसमें जो भी हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो करें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक इमेजिनेशन होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक इनोवेटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे करना है। उसके अलावा हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो जो हम सेकंड पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है कि आइडियाज़ को कैसे एक्शन में बदलना है। ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसको रियलिटी में आप कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसके अपने आइडियाज़ के बेसिस में आसपास से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उस प्रोडक्ट के बारे में जानें, उन प्रैक्टिसेस के बारे में जानें, और मार्केट सूटेबिलिटी क्या है उसके बारे में जानें। और उसके बाद आपको ज़रूरत है कि आप स्टेप्स लें कि आप किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम कह सकते हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी है। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टडी करे जानने के लिए कि मार्केट कितना फिजिबल है प्रोडक्ट के लिए या उस सर्विस के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो पहले से एंटिसिपेट कर पाएँ, जान पाएँ, उनको एसेस कर पाएँ, और उसके बेसिस पे ही वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कॉस्ट उसका होना चाहिए, और क्या सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से उनको इनपुट्स मिलेंगे या उनको रॉ मटेरियल मिलेगा जिसके लिए कि जिसके बेसिस पे वो अपना एंटरप्राइज चला सकते हैं। तो इस सब करने के लिए उनको एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है जिसको कि हम बिजनेस प्लान या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये बिजनेस प्लान जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरा डेवलप करें, इससे उनको शुरू से लेके एंड तक जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पूरा आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। उसके अलावा रिसोर्सिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स को एक रिसोर्स पूल बनाना पड़ता है। जैसे कि आजकल हम सुनते हैं कि 5 M's की बात होती है कि मनी है, मशीन है, मटेरियल है, मेन है, और मिनट्स है। मिनट्स से तात्पर्य है टाइम। तो इन सब चीज़ों को हमें अरेंज करना होता है एक साथ, और एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसका ये एक एसेंशियल रोल होता है कि सभी इन सभी जो चीज़ें हैं इन सभी रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करें और इनको पूल इन करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एंटरप्राइज सेटअप करना होता है। इसके लिए एंटरप्रेनर के लिए ज़रूरी है कि वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करें, सूटेबल लोकेशन अपने प्रोडक्ट के लिए या जो भी वो काम करना चाहते हैं उसके लिए ढूंढें, जो अपनी प्रमाइसेस है उसको डिज़ाइन करें, मशीनली इंस्टॉल करें और भी जिन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो करें। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं जो आप कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्लोर करें कि अगर आप घर पे भी रहते हैं तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो एंटरप्राइज को मैनेज करना है कि किस तरह से, जो हमने 5 M's की बात करी कि मेन है आपके पास में, ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल है, फाइनेंस है, तो किस तरह से आप अपने जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं उनकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और आपको ये इंश्योर भी करना है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको प्रॉपर रिटर्न्स भी मिलें, क्योंकि एक जो प्रॉपरली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वही आपको रिजल्ट्स भी देता है। अदरवाइज मिसमैनेजमेंट और क्योस में आपको पता नहीं लग पाता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है। उसके अलावा जो है लर्नर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आपने कुछ कर लिया उसके लिए, उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएं, क्योंकि जो आपने काम किया है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग रन तक चलेगा या सक्सेसफुल रहेगा, तो आपको दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको एक ही प्रोडक्ट पे बेस नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम फिर से अगर आज के टाइम की बात करें तो काफ़ी लोग अगर जिनका कोई मैरिजेस से रिलेटेड बिजनेस थे, जैसे अगर कोई वेडिंग कार्ड्स का बिजनेस करता है, तो आजकल उनकी सेल बिल्कुल नहीं हो पा रही है क्योंकि आजकल अभी वो टाइम नहीं है कि कार्ड्स छपवाने की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि उनके जो स्कोप ऑफ बिजनेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ ही आप कोई और रिलेटेड काम भी करते हैं, कुछ आपका स्टेशनरी का काम है या कुछ आपने कंप्यूटर वर्क है साथ में या कुछ भी इस तरह का रिलेटेड वर्क है, तो आपके पास दूसरा स्कोप रहता है कि आप अपने बिजनेस को उस तरफ ढाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा किसी भी, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि कौन एक स्मॉल बिजनेस कर सकता है। जब हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी स्मॉल बिजनेस कर सकता है, वो मे बी वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो वो भी कर सकता है, कोई नया पर्सन हो वो भी कर सकता है। उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका बिजनेस बैकग्राउंड हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग हम देखते हैं कि उनकी पूरी फैमिली में सब लोग जॉब में होते हैं लेकिन वो बिजनेस करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस बैकग्राउंड होना इम्पॉर्टेंट है। एजुकेटेड या अनएजुकेटेड होने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रूरल एरियाज़ के लोग भी उतने ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जितने कि अर्बन एरियाज़ के लोग होते हैं। उसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए वो फाइनेंस को अरेंज करना है। तो एंटरप्रेन्योर को एनालाइज करना होता है कि क्या ड्यूरेशन होगा बिजनेस का, या ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने टाइम में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, कितने कितने रुपए की ज़रूरत है मशीनरी खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वेजेस पे करने के लिए लेबर को। तो जो मनी हम स्पेंड करेंगे, जो भी एंटरप्रेन्योर स्पेंड करेंगे, उसको हम मशीनरी पे, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट पे, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और दूसरे हाथ पे जो दूसरा हम स्पेंड करेंगे रॉ मटेरियल्स पे, वेजेस और सैलरीज पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये जो है हर महीने बदलता रहता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को दोनों ही चीज़ों को अरेंज करना होता है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो या फिर वर्किंग कैपिटल हो। और जो फाइनेंस है वो सेल्फ कंट्रीब्यूट करके भी वो कर सकते हैं या फिर अब बैंक्स वगैरह से बोरो करके भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि बहुत सारे जो है गवर्नमेंट हेल्प भी अवेलेबल है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी लोन्स देती है इजी रेट्स पे, या कई बार कुछ ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जिसमें आपको बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नील रहता है और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है कि आप बिजनेस करें या फिर सेल्फ ऑन्टरप्रेनर ऑन्टरप्रेनर एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करें.